अब आगे सूरत नूर है। सूरत नूर को पढ़ने से पहले चंद बातें जरूरी हैं, ये आपके सामने रखती हूँ। पहले तो सूरत के नाम को देख लीजिए कि यह सूरत रोशनी वाली सूरत है। हकीकत है कि आज इंसानियत अल्लाह ताला को झुठला कर या अल्लाह को ना मानकर अंधेरों में भटक रही है। लोगों को रोशन ख्याल बनाने वाली, उनकी जिंदगी में अल्लाह की रोशनी लाने वाली सूरत नूर है। ये वो सूरत है जिसपे बहुत सारे लोग एतराज करते हैं। पहला ही लफ्ज इसका जिना और उसके बारे में जब आता है पहली चंद आयतों में तो लोग परेशान होते हैं। तो समझिएगा कि आज के दौर में जो उम्मत मुस्लिमा को मसाइल दरपेश हैं और पूरी दुनिया जिस प्लेग का शिकार है वो जिना है। आज वो कौमें जो हथियारों से नहीं टूटेंगी वो अपने ही ऐसे खुद साख्ता बनाए हुए कवानीन से टूट रही हैं। वेस्ट का खानदानी निज़ाम पूरे का पूरा एक किस्म का ब्रेक हो चुका है। शादी करने के लिए लोग तैयार नहीं हैं, शादी हो जाए तो बच्चे पैदा करने के लिए तैयार नहीं है, बच्चे हो जाएं तो मर्द उनकी जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार नहीं है, और सिंगल पेरेंट्स के नाम पर जो सोसाइटी में आपको दिखता है ये सब जिना की पैदावार है। इस्लाम ने इंसान से चंद वादे किए हैं, अक्ल का तहफ्फुज़, नसब का तहफ्फुज़, माल का तहफ्फुज़ और जान का तहफ्फुज़। शरीयत चाहती है कि एक इंसान की जान, माल, उसका नसब और उसकी आइडेंटिटी लूज ना हो। जिना के जरिए से नसब खराब हो जाता है। पैदा होने वाले बच्चों को ये पता ही नहीं कि उनका बाप कौन है। और एक औरत जो अपने पहलू में चार किस्म के बच्चे लेके फिरती है और पूछा जाए कि शौहर कौन है तो कहती है अभी मुझे वो शौहर मिला ही नहीं, मर्द मिला ही नहीं जिससे शादी करूं, तो मैंने अभी तक शादी नहीं की। ऐसी सोसाइटीज आज जिस परेशानी का शिकार है, यहाँ उम्मत मुस्लिमा के जरिए अल्लाह सुब्हान तआला उनको एक बड़ा खूबसूरत पैकेज दे रहे हैं। और वो क्या है, तुम अभी अल्लाह को नहीं मानते ना, ना मानो, तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चिढ़ है ना, ठीक है रहने दो, तुम अभी मरने के बाद जीने पे भी मुतमईन ना करो, तुम इस्लाम का फैमिली सेटअप ले लो। इस पूरी सूरत में हम जिना और उसके सदेबाब यानी प्रिकॉशंस कि जिससे किसी सोसाइटी से अडल्ट्री का खात्मा हो और स्ट्रॉन्ग फैमिली सेटअप हो, आप देखेंगे इसमें अल्लाह ताला ने ये सब कुछ पेश करके हम सबको बता दिया कि वो मुआशरे जो आज कहलाती हैं बड़े महजब मुआशरे हैं वहां पता है हर में एक रेप हो रहा है। यूएसए में 4% बच्चे जो के रेप हो रहे हैं और अपनी ही फैमिली में होते हैं। अब वो जिना भी आम हुआ, लिविंग टुगेदर भी आउट ऑफ डेटेड फैशन हो गया, बॉय फ्रेंडशिप गर्ल फ्रेंडशिप ये तो बहुत ही ओल्ड फैशन हो गया, अब है पीडोफीलिया, होमोसेक्सुअलिटी भी काफी हद तक लोग उससे यूज टू हो गए। आज हर नए दिन में दुनिया को ना रहने के काबिल किया जा रहा है। मुहर्रमात से जिना, एक मर्द के अपनी ही बेटी से 8 बच्चे, खबरें सुनी होगी आपने, बहन से रिश्ता, और वो जुमले के कितने बेवकूफ हैं वो मुसलमान जो अपने घर में एक बच्ची जो आपके साथ पली बड़ी, जो आपका मिजाज जानती आप उसका जानते, उसको छोड़कर बाहर एक अजनबी लड़की से निकाह करते हैं। तो लिहाजा शादी करनी है तो बेस्ट मैच इज योर सिस्टर। ये खबरें छपी, ये अखबारों के एक आर्टिकल है, मैंने डिटेल में ये रिपोर्ट पढ़ के सुनाई थी किसी क्लास में। वो कहते हैं ये क्या तुम लोगों ने मुश्किल डाल दी है, इससे शादी नहीं कर सकते, उससे नहीं कर सकते, और वो तो आप मेरी आंखों के सामने वो तस्वीर आ गई, बुढ़ी नानी है और नवासा उससे शादी करके रचा के बैठा हुआ, बुढ़ी औरत अपने आप को सजा संवार के बैठी और उसके पहलू में इतना सा नवासा कि 12-16 साल का। वो कहते हैं मुझे अपनी दादी की खिदमत करनी है तो वो क्या शौहर बन के करनी है आपने, जब आपने औलाद को उसकी जिम्मेदारियां नहीं सिखाई तो फिर वो यही कर, एक ही रिश्ता चारों तरफ, लव रोमांस सेक्स, ये 3 लफ्जों पे ट्रायंगल चलती है आज के मुआशरे की। तो सूरत नूर हमें इंशाल्लाह बहुत कुछ सिखाएगी, क्या उम्मत मुस्लिमा क्या मेजर्स ले कि दुनिया से इस चीज को खत्म करे। और मैं आपको पूरे यकीन से कह सकती हूँ अगर हम मुस्लिम्स अपने मुल्कों में अपने इस्लाम और इन सारी चीजों को जो हम पढ़ेंगे इसमें नाफिज करें तो दुनिया हमें वैसे ही इन्वाइट करेगी जैसे यूसुफ को मिस्र के बादशाह ने बुलाया था कि आओ हमारे मुल्क के खजानों को जरा मेंटेन कर दो। पूरे यकीन से कहने लगी हूँ कि पूरी दुनिया से मुस्लिम स्पेशलिस्ट जाएंगे नॉन मुस्लिम मुल्कों में और आके कहेंगे कि प्लीज हमारी जान छुड़ाओ। और ये बातें तब सुनने में आने लग गई कि ये मुल्क जिधर शुरू से को एजुकेशन थी सब कुछ था, अब वो इन चीजों पे बोलने लग गए कि अब हमें को एजुकेशन नहीं चाहिए, और हमें इस्लामिक तरीके चाहिए कि लड़कियों को अलग रखो, लड़कों को अलग रखो। तो अल्लाह ताला हमारा दुश्मन नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब छोटे छोटे बच्चों पे ये बात हो, कहते हैं कि सेक्सुअल टूरिज्म होता है, खेलते हुए बच्चों को जाके दिखाया जाता है बाहर से, जर्मनी और दूसरी जगहों से और इधर उधर से आते हैं, बच्चों को चूज करते हैं, ये बच्चा नहीं, इससे भी छोटा, इससे भी छोटा, और पीडोफीलिया आज एक पूरा गैंग ग्रुप बन चुका है। और वो वहां जाकर उन बच्चों से फिर जो भी सेक्सुअली उनके अब्यूज करते हैं, ये अब ढकी छुकी बातें नहीं है। ये वो लोग हैं जहां औरतें नंगी फिरती हैं, जैसे कसाब की दुकान पे गोश्त लटक रहा होता है, इन सोसाइटीज में नंगी टांगों और नंगे हाथों ले वो लोग अब ये काम करें क्योंकि दिल भर गए, अब औरतों से दिल भर गए। तो आइए देखते हैं सूरत में हमारे लिए क्या है। मैं आप सबको दावत जरूर दूंगी कि इसको आप डिटेल से बाद में सुने। ये पूरी की पूरी सूरत जो है वो, लेकिन कब सुनेंगे, जब कद अफलहल मोमिनून पढ़ चुके होंगे, ईमान आ जाता है ना, फिर ये बातें समझ आती हैं। 13 साल तक मक्का में कोई इस्लामी सजा नहीं थी, कोई जिना पे कोई हद लगनी, कोई कीड़े लगने, कत्ल नहीं था। पहले लोगों की ब्रेनस्टॉर्मिंग की गई, उनको हिदायत दी गई, उसके बाद ये बातें पेश की गई। आज भी मुसलमान इसी तरह से इस्लाम को पेश करेंगे तो लोग बहुत अच्छी तरह समझेंगे। और अगर आप अपनी मर्जी से कुछ चीजों को लेकर आप कहते हैं बच्चियों को सूरत नूर पढ़ा देते हैं, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती। आप बच्चियों को सूरत नूर कैसे पढ़ा सकते हैं अगर आपने उनको कदफ लहल मोमिनून अल्लज़ीना फी सलातिहिम खाशियून नहीं पढ़ाई। तरतीब अल्लाह की खूबसूरत है। जो मैंने देखा, इन अहकामात का बोझ कौन उठाता है? जिसका दिल ईमान के साथ मजबूत हो चुका होता है। तो आइए दुआ करते हैं। और वो बड़ी प्यारी दुआ अल्लाह के नबी ने सिखाई कि अल्लाहुम्मा जल्फी कल्बी नूरन वफी बसरी नूरन। इंशाल्लाह आपको वो भी भेज देंगे। फजर के बाद सुन्नतों और फर्जों के बीच में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की तरफ जाते थे तो ये दुआ मांगते थे। तो आज के दौर में उम्मत मुस्लिमा को कसरत से ये दुआ मांगने की जरूरत है कि अल्लाह इस कुरान के नूर को आम कर दे। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत नूर में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरत अनजलनाह व फरदनाह व अनजलना फीहा आयातिम बैयिनात लअल्लकुम तज़क्करून। ये एक सूरत है जिसको हमने नाजिल किया और इसको हमने फर्ज किया, यानी हमने इसको नाजिल किया और इसको फर्ज किया, और हमने इसमें साफ साफ हिदायत नाजिल की हैं। क्या पता चला ये चॉइस नहीं है, ये तुम्हारे लिए कोई ऐसा सिलेक्टेड पैकेज नहीं है, यू कैन चूज, ये फर्ज है। किसी सूरत का आगाज इतना स्ट्रांग नहीं जितना इस सूरत का है। कैसे इग्नोर करोगे फर्द ना हा, हमने किया फर्ज, अल्लाह ने किया, मौलवियों ने नहीं किया, दीनदारों ने नहीं किया, उलमा ने नहीं किया। इसके अहकाम सुन्नत नहीं है, नफिल नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है, इसके अहकाम फर्ज है। जिसको आज इतना लीनियट लिया तो उम्मत मुस्लिमा की धजियां बिखर गई। अल्लाह ताला कहते हैं कि इसकी रोशन और बैजीनात है, मैनिफेस्ट ट्रुथ है, साफ समझ आती है, ना समझे तो और बात है। सबको पता है कि अल्लाह को कैसी औरत चाहिए, कैसा मर्द चाहिए, मुस्लिम सोसाइटी कैसी होती है, सबको पता है। अल्लाह ने हमें अनक्लियर दीन नहीं दिया, लेकिन लोग मानने को तैयार हों फिर ही है ना। अज़ानिया तो वज़ानी फजली तो कुल वाहिद मिनहुमा मिया तजल्दा, जानिया औरत और जानी मर्द दोनों में से हर एक को कोड़े मारो, और इन पर तरस खाने का जज्बा अल्लाह के दीन के मामले में तुमको दामनगीर ना हो। अगर तुम अल्लाह और रोजे आखिर पर ईमान लाते और इनको सजा देते वक्त अहले ईमान का एक गिरोह मौजूद हो, क्या पता चला कि तुम्हें ये सजा बोझल लगी। तो ये सजा कब दो, कैसे दो? याद रखिए कि शरीयत बुरबरी जमीन में जड़ नहीं पकड़ सकती जब तक दिल की मट्टी में ईमान रासिख नहीं हो चुका होता, बात समझ नहीं आती। और नमाज की इतनी डिटेल्स कुरान में नहीं है जितनी जिना की है, क्योंकि आज के दौर का सबसे बड़ा नासूर जिना है। अल्लाह कहते खत्म करना चाहते हो तो पहले लोगों का तस्किया करो, तस्कीर करो, उनको अल्लाह का खौफ दिलाओ, इसकी बुराइयां आम करो, इसके बड़े बड़े एड लगाकर इसकी हलाकत दिखाओ, डी ग्लैमराइज करो। एक होता है किसी चीज को मार्केट करना, उसको पब्लिसाइज करना, और एक है कि उसकी असल दिखाना। मतलब आप देखिए कि एड्स है, आज लोग जो एड्स के इश्तेहार दिखाते हैं वो क्या दिखाते हैं कि एड्स हो जाए तो उसके बाद क्या क्या तकलीफें होती हैं, क्या वो एड्स की वजूहात और वो सारी चीजें आम करके दिखाएंगे जिससे एड्स फैलता है, फिर तो एड्स फैलेगा। यही इस्लाम का मिजाज है, चीजों के आफ्टर इफेक्ट्स दिखा दो। कोई लड़का लड़की गलत काम करेगा नहीं अगर उसको 100 कोड़ों की सजा का डर होगा। कितनों को पड़े? चंद को पड़े, 1, 2, 4, 6 केसेस। सजा के खौफ ने गुना की लज्जत खत्म कर दी। आज कहते हैं नहीं, इसकी तो बात ही ना करो, اب ذرا حکمت سے سوچیں، آپ اس پوری سورت کو ایک ماں اور بیٹیوں کی ماں اور ایک عورت ہونے کے ناطے سنیں گے تو آپ کو اس کی حکمتیں سمجھ آئیں گی، اور ایک بگڑے ہوئے نوجوان اور پرورٹیڈ سوسائٹی کے ایک علمبردار بن کے سنیں گے تو آپ کو یہ سزائیں مشکل لگے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں کر کے بتائیں کہ یہ ہمدردی کا موقع نہیں ہے اور یہ سزا ایسے نہیں ہوگی، اس کے لیے گواہ چاہیے، چار گواہ، آنکھوں دیکھا خالو. محفلوں میں جب یہ گناہ ہو، یعنی سمپل اس وقت اتنی ڈیٹیل بتا دوں کہ یہ سزا آ جاتے نہیں لگے گی، کیا فون کر کے بتا دے فلاں کی بیٹی اس کے ساتھ پھر رہی ہے، فلاں مرد ادھر ہے، مجھے لگتا ہے وہ اکیلے ہیں. نہیں، چار لوگ بذات خود زنا کا فعل ہوتا ہوا سر عام دیکھیں تو یہ تو پھر نائٹ کلبز میں ہی ہوگا، تو یہ تو پبلک پلیسز پہ گندے کام کرنے والوں کو لوگ دیکھیں گے، عام حالات میں تو یہ سزا لگے گی نہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا وقت کیوں آنے دیتے، اس سے پہلے ہی مینس لے لو، وہ سارے میئرز لے لو جو یہاں تک بات پہنچاتے ہیں. اور پھر آگے چوائس کا ذکر کیا، الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ، زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، کیونکہ حرام، یہ حرام کیا گیا کس پر، وحرم ذالک علی المؤمنین، یہ حرام کیا گیا اہل ایمان پر. چوائس بتائی گئی، جیسے لوگ خود ہوتے ہیں نا، جیسا ان کا تھاٹ پروسیس ہوتا ہے ویسے لوگوں کو چوز کرتے ہیں. اور حکم بھی دیا گیا اپنی پاک دامن بیٹیوں کے نکاح غیر پاک لوگوں سے نہ کرو. بعض دفعہ رشتے کرتے وقت ماں باپ اتنے کمپرومائزنگ اور اتنے زیادہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ اچھا رشتے کا نہ کر دیا تو کیا ہوگا، اچھا یہ رشتہ چلا گیا تب کہاں آئے گا، عمر بڑی ہو رہی ہے، سب کچھ پوچھ لیتے ہیں، یہ نہیں پوچھتے کہ بچے کا کردار کیا، یہ نہیں پوچھتے نمازی ہے کہ نہیں، یہ نہیں پوچھتے کہ اس کے کسی اور کے ساتھ تعلقات ہے کہ نہیں، کیونکہ احساس بھی تلا کہتے ہیں خود ہی کر لے گا، سب ٹھیک ہو جاتا ہے بعد میں ٹھیک ہوگا. تو پوچھا جائے یہ رشتہ کیوں چھوڑا، نہیں جی لڑکا کماتا نہیں تھا تو بھی بعد میں کما لے گا، جاب نہیں تھی تو بعد میں آئے گی. نہیں، جاب کو بیس بنا کر، کمانے کو اور ایجوکیشن کو بیس بنا کے رشتے چھوڑ دیتے ہیں اور ناپاک نہیں چھوڑتے. اور تکلیف کے ساتھ کہوں گی، میں سینکڑوں ایسی لڑکیوں کو آج بھی جانتی ہوں کہ جو غیر ملکوں میں اپنے ملکوں سے بھیج دی جاتی ہیں گائے بھینسوں کی طرح، صرف اس نام پہ کہ لڑکا باہر ہے اور کھاتے پیتے لوگ ہیں، اور یہاں آ کے جو حالات کھلتے ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. ہر دوسری لڑکی کرائسس سینٹر میں کیوں بیٹھی ہے، ہر دوسری ماں کیوں روتی ہے، وجہ کیا کہ لڑکے بگڑ گئے، خراب پوری جنریشن ایک پلیوٹیڈ ہوئی مسلمز کی بھی، کہ جب ماں باپ نے آ کر جابس شروع کر دی باہر کے ملکوں میں اور بچے نگلیکٹڈ ہو گئے، پھر ان کی بیبی سیٹنگ کارٹونوں نے کی اور ان کی بیبی سیٹنگ کمپیوٹر اور میڈیا نے کی، اور ساری کسر نکال دی ایجوکیشنل سسٹم میں. 4-6 سال کے بچے کو جب آپ سیکشوئل ایجوکیشن دیں تو پھر یہی کچھ تو ہوگا. آج جس طریقے کے مینس بنائے جا رہے ہیں ویسٹ میں اور بنے، آج نہیں کوئی نئے نہیں ہے، اس سے امپریس ہونے کی بجائے اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے. پہلے وہ چیزیں جو 7-8 سال کی عمر کے بچوں کو اسکولوں میں دکھاتے تھے، اسکولوں میں کہ چلے ان کو اپنے باڈی پارٹس پتا ہونے چاہیے، ان کو سیکشل ایجوکیشن دے، اب وہ بچوں کے ڈے کیئرز میں دکھائے جا رہے ہیں. یہ خود گواہی دی گئی ایک ماں نے بھی لنڈن کورس میں، یہ ساری چیزیں میں نے ان کی کوٹ کروائی تھی ان سے کہ آپ خود بتائیں آ کے، میں نہیں بتاتی. وہ خود بھی ویس کی پڑھی بھی بچی تھی، کہتی جب ہم پڑھتے تھے تو یہ چیزیں ہم نے 6ٹی 7ویں کلاس میں سیکھی تھی، ویڈیوز دکھا، لڑکا اور لڑکی ساتھ بٹھا کے پوری ویڈیو دکھاتے ہیں کہ یہ ہوتی ہے سیکس اور یہ ہوتا ہے طریقہ اور ایسے پیدا ہوتا ہے بچہ. اور اب وہ بچے جو کچھ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جو دیکھیں گے وہ کریں گے. کہتی جو ہم نے اپنے 6 سال میں کیا تھا، میرا بچہ چھوٹی عمر میں گھر، وہ گھر آ کے اما سے کہہ رہا ہے ماما یہ سچ ہے، ماما ایسے ہوتا ہے. اتنا معصوم بچہ، میں خود اس کو جانتی ہوں. بچوں کی معصومیت چھین لی اور نکاح کر نہیں سکتے، شادی نہیں کر سکتے 18 سال سے پہلے. اور جن سوسائٹیز میں اب یہ باتیں پھیل گئیں کہ ہائی اسکولوں میں پرووائڈ کیجیے یہ فیسلٹی ایز اے فیسلٹی کہ لوگ اپنی خواہشیں پوری کر سکیں ایسی جگہوں پہ بیٹھ کے، آپ کیا سوچتے ہیں کتنی گندگی میں آج ہماری نسلیں پروان چڑھ رہی ہیں؟ اور اگر پھر کوئی دین ایمان بچا لے تو بڑی بات ہے. اور ایک رپورٹ ابھی چند دن پہلے کسی نے بھیجی تھی، 54% مسلم یوتھ بھی شادی سے پہلے یہ حرکت کر چکے ہوتے ہیں آج کے دور میں. کون بچائے گا، کتنا بچے گا، دامن گیلا ہوگا کہیں پیار کے نام پہ، محبت کے نام پہ. آپ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اس وقت عرب کی کیا حالت تھی، وہاں زنا کی کیا کیفیت تھی، زنا بالجبر منع تھا، یعنی بائی فورس کوئی کسی کو ریپ نہیں کر سکتا، لیکن لڑکا لڑکی دونوں راضی ہیں تو کہتے تھے اٹس فائن. آج کے اٹس اوکے سلیپنگ ٹوگیدر، ہاں زبردستی نہیں کر سکتے، آج یہی تو بات ہے. تو کبھی کوئی شوق میں کر لیتے ہیں، کبھی کوئی مجبوریوں میں کر لیتے ہیں، اور کبھی کچھ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا ایک ہی علاج ہے کہ لوگوں کو تم पहले से एजुकेट करो, और शादियों के वक्त में इस चीज का ख्याल ना रखना आने वाली नस्ल को तबाह करना है। आज वो माएं रोती हैं कि हम बच्चों को इस्लामी स्कूलों में ले जाना चाहते हैं, शौहर दूसरी जगह जाते हैं, हम वो करते हैं वो करते हैं। माएं बच्चों को लेके मस्जिदों में फिरती रहती हैं, चक्कर लगाती हैं, मर्दों को नमाज की भी तौफीक नहीं होती। ये तोहफे हैं इस बात के कि हमने लोगों को अपने बच्चों को कुरान ही दिया। मैं कहती हूँ आप वेस्ट में आने से पहले या आप वेस्ट में रहते हैं 15-16 साल की उम्र में ये पैकेज दें। कल अल्लाह ने इतना अच्छा दिल में आइडिया डाला, ये अक्सर मेरे मुंह से आपने बात इस साल में भी कई बार सुनी होगी कि 15 साल का होने तक बच्चों को कुरान पढ़ा दें, कही है ना। अल्लाह ने दिल में डाला हम क्यों ना ऐसा स्कूल ही शुरू कर दें, छोटे बच्चों से ये शुरू कर दें कि पहले साल में इतना, दूसरे साल में तीसरी, ये सूरतें 15 ईयर्स का कोर्स है, या कह लें 10 साल में एक बच्चा जो 5 साल का आपके भेजा जाए, 10 साल में वो पूरे कुरान की सूरतों से गुजर चुके हैं। हम क्यों इंतजार करते हैं 18, 20, 25 साल का, और बिगड़ने का इंतजार क्यों करते हैं? चीज बिगड़ जाए तो वो बननी सही होती है, ये साथ साथ रेनोवेट करें। आप देखें कभी कपड़ा बहुत गंदा हो जाए तो साफ ही नहीं होता, बाज दफा घर में स्टेन इतने पक्के हो जाते हैं जो मर्जी डाल दीजिए वो फिर साफ नहीं होंगे। तो आप मैं चाहते हैं कि मेरे बच्चे गंदे हो जाएं? इसलिए आज ही उनकी नजरों को पाक करना है। इसके बाद आप देखें कि जो अगली आयत है उसमें तोहमत की बात है, पहले जिना की, चॉइस जानी की। अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे लोगों को तुम ना रखो, बल्कि क्या करो, वल्लज़ीन यरमून अल-मुहसनात थुम्मा लम यातू बिअरबाती शुहदा, जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाएं फिर 4 गवाह ना लेकर आए, इनको 80 कोड़े मारो और इनकी गवाही कभी कबूल ना करो, वो खुद ही फासिक हैं सिवाय इन लोगों के जो इस हरकत के बाद तौबा करें और इसलाह करें, और अल्लाह जरूर इनके हक में गफूर रहीम है। नोट कीजिएगा, जिना की सजा 100 कोड़े और जिना की तोहमत लगाने की सजा 80 कोड़े, सिर्फ 20 कोड़ों का फर्क है जुबान के हिलने और शर्मगाह के हरकत करने से। इतनी खूबसूरत सोसाइटी इस्लाम चाहता है, कोई स्कैंडलिज्म नहीं होगा, कोई सियासतदानों की बातें नहीं फैलेंगी, कोई मजहबी रहनुमाओं और कोई लीडर्स और बड़े लोगों की बातें मीडिया पर नहीं उछाली जाएंगी, ईमेल्स नहीं भेजी जाएंगी कि देखो इनके करतूत के, किसी ने ये बात खोली गवाही नहीं लाए 80 कोड़े खाने के लिए तैयार हो जाए। इस्लाम पहले जुबान की हिफाजत सिखाता है फिर शर्मगाह की हिफाजत होती है। और जहां इतने गंदे लतीफे मारूफ हों, छोटे छोटे बच्चे सियासतदानों की ऐसी ऐसी बुरी तस्वीरें बना बना कर पेश करते दिखें, फिर उस सोसाइटी में भी इस चीज़ों को तो आप डिस्कस ही नहीं कर सकते। इसलिए फरमाया कि किसी के ऊपर बात करने से पहले 10 दफा सोचो। अब सवाल पैदा होता है, किसी दूसरे को देख लिया बोल नहीं सक रहे जब तक कि 3 गवाह और नहीं लाते, खामोश हो जाते हैं, ठीक है अल्लाह पे मामला, पर कोई मर्द अपनी बीवी को जिना करते देख ले तो क्या करे? तो उसकी जवाब अगली आयत में, जो लोग अपनी बीवियों पर इल्जाम लगाएं और खुद इनके पास अपने सिवा कोई दूसरे गवाह ना हो, तो इनमें से हर एक शख्स की शहादत ये है कि वो 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर गवाही दे कि वो अपने इल्जाम में सच्चा है, और 5वीं बार कहे कि इस पर अल्लाह की लानत हो अगर वो अपने इल्जाम में झूठा हो। और औरत से सजा इस तरह टल सकती है कि वो 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर शहादत दे कि ये शख्स अपने इल्जाम में झूठा है, और 5वीं मरतबा कहे कि इस बंदी पर अल्लाह का गजब टूटे अगर वो अपने इल्जाम में सच्चा हो। तुम लोगों पर अल्लाह का फजल और उसका रहम ना होता और ये बात ना होती कि अल्लाह बहुत लुत्फ फरमाने वाला है और हिकमत वाला है, तो बीवियों पर इल्जाम का मामला तुम्हें बड़ी पेचीदगी में डाल देता, यानी तुम्हें बहुत मुश्किलात में डाल देता। क्या पता चला कि जब कोई मर्द अपनी बीवी को ऐसे काम में देखे तब वो क्या करे? लियान कर ले, क्योंकि वो ऐसी बीवी के साथ रह तो सकता नहीं है। बात करेगा जाके कि मैंने ऐसा देखा, तो कोड़े पड़ेंगे। कोड़े ऐसे थोड़ी पड़ जाते थे कि रात जाते आप पकड़े, जैसे एस्प्रिन खिला दी इस तरह कोड़े डलवा दिए। इतने सख्त रूल्स हैं, आप इसकी तफसीर सुनेंगे आपको कई चीजें शरीयत की समझ आएंगी कि इतनी खूबसूरत शरीयत इंसानों की तो बनाई हो नहीं सकती। तो उस वक्त फिर लियान करके तलाक की एक सूरत होती है, फिर शौहर बीवी दोनों जुदा हो जाते हैं। आप देखिए कि इस्लाम चाहता है कि गंदगी को ढको नहीं बल्कि उसको खत्म कर दो। कभी अपने घरों में हमने ये किया कि गंदगी को लाकर ड्राइंग रूम में रख दें, ट्रैश कैन को सारे घर में फिराते फिरे, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि गंदी बातें ना करो, गंदे काम ना करो, गंदी चीजें ना देखो, इन सब चीजों से तो बाहर हो रहा है। अब इसके बाद एक अमली तस्वीर पेश की जा रही है एक ऐसे बुख्तान की जो हजरत आयशा पे लगा। वाकया कुछ ऐसा कि सन 6 हिजरी में गजवा बनु मुस्तलक हुआ, जिसको गजवे मुरैसी भी कहते हैं, कुआं था मुरैसी नाम का, वहां मुसलमानों ने पड़ाव डाला था। अगले दिन जब निकल रहे थे लोग वापसी पे चल पड़े, हजरत आयशा साथ थी इस जंग में लगे नबी के, दुबली पतली छोटी सी उम्र की, क्या होंगी 12-13 साल की उम्र थी उनकी। वो उस वक्त कजाए हाजत के लिए गई हुई थी, जब काफिले ने कूच किया सुबह का वक्त था, तो उस वक्त वो अपने हौदज में नहीं थी, वो जो पालकी सी होती है जिसमें औरतें बैठ के सफर करती थी, मर्द उठाते थे नीचे से, वो उसमें नहीं थी। लेकिन जो उठाने वाले थे उन्होंने फील नहीं किया कि हौदज खाली है, क्योंकि उनका इतना वजन नहीं था, खाली हौदज लेकर उठ के चले गए। वो चले गए, पीछे हजरत आयशा जब फारिग होके आई तो देखा तो कुछ भी नहीं है, इन्ना लिल्लाह, बड़ा परेशान हुई, लेकिन अकलमंदी का इजहार क्या किया कि वहीं बैठ गई, कि जब वो मुझे वहां जाकर नहीं देखेंगे तो इधर ही आएंगे। और ये अकलमंदी की बात है कि इधर उधर भागने की बजाय वो इधर जा रहे हैं, अब उधर जा रहे हैं, अब उनको ढूंढ रहे हैं, वो उनको कोई किसी को नहीं मिलता, वहीं बैठी, चादर मुंह पे ली, लेट गई। इतने में सुफान बिन मुअत्तल साहबी, जिनका काम ही ये था कि वो काफलों के एंड पे उठते थे, और कोई गिरी पड़ी चीज, कभी किसी का बच्चा रह गया, कोई चीज रह गई, लॉस्ट एंड फाउंड के कहले जिम्मेदार थे, वो वहां आते थे और चीजें लेके निकलते थे। जब वो वहां आए तो उन्होंने किसी शख्स को लेटा देखा, अभी तक उनको ये तक नहीं पता कि इस चादर के अंदर मर्द है कि औरत है, और उन्होंने देखा समझ गए कि कोई काफले से पीछे रह गया, तो कहने लगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी आवाज सुन के आयशा ने अपने चेहरे से चादर उठाई। हजरत सुफान पर्दे की आयतें उतरने से पहले हजरत आयशा को देख चुके थे, ये सन 6 हिजरी, इससे 1 साल पहले पर्दा फर्ज हो चुका था, उससे पहले अजवाज मुतहरात भी नहीं करती थी, तो साहबा ने देखा हुआ था उनको। उन्होंने जब देखा इतना ही कहा अल्लाह के नबी के घर वाली इधर, उसके बाद कोई बात दोनों में नहीं हुई। सुफान गए, अपना ऊंट लाए, हजरत आयशा के पास किया, ऊंट नीचे गया, हजरत आयशा उस पर सवार हुई, सुफान ने ऊंट की नोकेल पकड़ी और पैदल चलने लगे। कोई कन्वर्सेशन, कोई टॉकी जॉकी, बातें, हाल चाल, किस्से कहानियां सफर में नहीं हुए। कुछ घंटे के बाद हजरत आयशा और उस शख्स के साथ काफले को मिल गई। बात देर भी कितनी को हुई हुई थी। अल्लाह का करना देखिए कि हजरत आयशा को सुफान के साथ आते अब्दुल्ला बिन उबई ने देख लिया, जो मुनाफिक था, जो इस हद तक का मुनाफिक था, इसके बावजूद जंगों में जाता था। हम तो घर बैठ के बातें करते हैं ना, बस उसने राई तो थी भी नहीं, राई को समझ के राई पहाड़ बनाया, शोर मचा दिया, नबी की बीवी जान के पीछे रही, देखो ये बच के नहीं आई, नाउज़ुबिल्ला सुम्मा नाउज़ुबिल्ला, हजरत आयशा के खिलाफ बातें शुरू कर दी। कितना बड़ा तूफान उठा होगा। इन बातों में चंद मुखलिस सहाबा और सहाबियात में भी कोई शामिल हो गए, एक दो, जिसमें एक तो हजरत मस्तो थे, जो कि हजरत अबू बकर के ही अपने रिश्तेदार थे और गरीब भी थे, मुहाजिर भी थे, और अबू बकर उनकी केयर करते थे, पैसे देते थे उनको, उनसे भी बातें निकल गई। हजरत आयशा को कुछ नहीं पता, ये मदीना वापस आए, काफला आए, ये कहती है मैं घर आई तो मुझे बुखार हो गया, कोई सफर की थकन होगी, कुछ होगी, मैं घर में ही पड़ी रही, मुझे कुछ नहीं पता बाहर क्या। लेकिन एक चीज मैं फील करती थी कि जैसे पहली बीमारी में जब कभी मैं बीमार होती थी तो अल्लाह के नबी की जो मोहब्बत और जो आपका मेरे साथ नरमी का मामला, तो वो इस तक तो इतना नहीं है, देखिए दिल में बाल आता है तो पता चल ही जाता है, लेकिन अल्लाह के नबी ने भी कुछ नहीं कहा, तो मैं दुखती थी कि अल्लाह के नबी मेरी उतनी केयर नहीं कर रहे जितनी करते हैं। एक दिन वॉशरूम में जाने के लिए, उस दौर में औरतें रातों को जाती थी, मिलके जाती थी, और दूर जंगलों में जाके फारिग होती थी, तो कहती कि उम्मे मस्तो, वही जो इनके कजन थे, उनकी माँ के साथ गई, किसी जगह पत्थर से उनका कपड़ा अटका, तो उन जैसे गिरते गिरते बची, कहने लगी मस्तो तेरा बुरा हो, बेटे को जैसे हम कहते हैं तेरा बेड़ा तर, जैसी अपनी जुबान में कुछ कह दिया। कहती मैंने कहा अम्मा आप अपने बेटे को बुरा क्यों कह रही हैं, वो आपको नहीं पता बदरी सहाबी है। कहती मैं उसको बुरा क्यों ना कहूं, तेरे अंदर बातें करने वालों में वो भी शामिल है। कहती मेरे लिए बातें, मुझे क्या बातें, तुझे नहीं पता कुछ का, मुझे तो नहीं पता क्या बात। उन्होंने सारी कहानी सुना दी कि तेरे बारे में तो घर घर बातें हो रही हैं। आप तो फिर आयशा को समझ आ गई कि अल्लाह के नबी इतने खामोश क्यों हैं, चुप के, लेकिन क्या कुर्बान जाने को दिल नहीं चाहता, इतना प्यारा शौहर, ना डांट ना झाड़ ना घर आके कपड़े फाड़े और ना बर्तन तोड़े और तलाक की धमकियां दी, आज जाहिल मर्द ऐसी हरकतें करते हैं जो बीवियों के साथ, खामोश हो गए। कहती है मैं घर आई, मैंने कहा अल्लाह के नबी मैं अपने माँ बाप के घर जा सकती हूँ कुछ दिन के लिए। कहती है खिलाफ है तवक्को, अल्लाह के नबी ने कहा चली जाओ। कहती इससे पहले कभी नहीं हुआ था कि मैं जाना चाहूं और आप मुझे जाने दें, यानी इतनी मोहब्बत फरमाते थे, और औरतों की बात है, मर्द जाने ना दें तो रोती हैं, और कह दे जाओ चली जाओ तो रोती हैं। तो कहती अल्लाह के नबी ने मुझे कहा तो मैं इस पर दुखी हो गई। खैर कहती जब वहां आई तो वहां भी हालात ऐसे ही देखे, माँ बाप को तो ऐसे रोना लगा हुआ, वो कुरान पढ़े और रो रहे, अब समझ आ गई कि सब तरफ क्या है। अब ये बच्ची जो थी वो इस तरह से थी, कहती अल्लाह के नबी आते थे मेरा हाल पूछने, आते बैठते थोड़ी देर बैठ के चले जाते, ना मेरे अंदर बात उनकी होती ना कुछ होती। एक दिन ये तक कॉन्वर्सेशन होगी कि आयशा अगर तेरे से कुछ गलती हो गई है तो माफी मांग ले, अल्लाह माफ कर देगा। कहती अब तो फिर मेरे आंसू थम गए। मैंने कहा झूठ सुनते सुनते आप लोगों को इतनी आदत हो गई है, आज मैं सच बोलूंगी तो आप नहीं मानेंगे, और मैं झूठ बोलूंगी तो आप मानेंगे, मैं तो वही कहूंगी जो यूसुफ के बाप ने कहा। कहती जज्बात और दुख की वजह से मुझे हजरत याकूब का नाम भी भूल गया। तो मैंने क्या कहा कि वल्लाहुल मुस्तान अला मा तसिफून फसब्रुन जमील, अल्लाह मेरा उस पर मददगार है जो ये लोग मेरे बारे में कहते हैं, मैं तो सब्र करूंगी। इन्ना मश्क वसी व हुस्नी अल्लाह। इसी तरह से ये दिन चलते रहे, एक महीना हुआ। इस दौरान अल्लाह के नबी के साथियों से जब मशवरे किए गए, कुछ ने यहां तक कह दिया अल्लाह के नबी आयशा को तलाक दे दें, अल्लाह आपको और बीवियां दे देगा। घर की जो मुलाजमा होती है उससे ले लेते हैं खबर, वो ज्यादा जानती है। बरीरा नाम की एक लौंडी हजरत आयशा की थी, उनसे जाके पूछा ए बरीरा बता आयशा कैसी है, कुछ चलाक होशियार कैसी औरत है, क्योंकि जिना ऐसे थोड़ी हो जाता है, या ऐसी औरतें हरकतें को ऐसी बच्चियां करती हैं जो इस तरह की हो। तो बरीरा ने क्या कहा, कहने लगी आयशा की बात कहते हो, वो तो इतनी भोली है, आटा गूंद के रख के छोड़ के चली जाती है और बकरी आती है और आटा खा जाती है। मतलब ये कि वो सीधी सी लड़की है, वो कैसे ये काम करती है। बहरहाल एक महीना दर्द तक, और सबसे ज्यादा इसको किसने बर्दाश्त किया, नबी सल्लम ने और आयशा ने, जिनके घर पे फितने आ गए दीन के नाम पे। आज दीन के नाम पे कोई आपको बदनाम करे तो ये वाकया सुन ले कि अल्लाह ना करे किसी ने आपके ऊपर कोई तोहमत तो नहीं लगाई, लेकिन जब फिर अल्लाह का हुक्म हुआ तब ये जो आयतें हम पढ़ने लगे, ये अल्लाह के नबी पे नाजिल हुई। आप हजरत आयशा के पास ही बैठे थे अबू बकर के घर में, हजरत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के नबी के ऊपर वही के असार हुए तो मुझे समझ आ गई। कहती मेरे दिल को यकीन था कि अल्लाह मेरी बेगुनाही साबित करेगा, लेकिन ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी शान में अल्लाह ताला कुरान की आयतें नाजिल कर देगा। और जब ये आयतें उतरी तो अल्लाह के नबी का चेहरा ऐसे चमका जैसे बादलों में से कभी कभी फिर सूरज निकलता है। कहा वो आयशा तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तेरे बारे में कुरान की आयतें नाजिल की। दुख चंद दिन का हो या ज्यादा हो कट जाता है। आप सच्चे हो अल्लाह आसमानों से आपकी बेगुनाही ले आता है। पीछे बीबी मरियम का पढ़ लिया, सूरत मरियम में अल्लाह ने बच्चे को बुला दिया, या अल्लाह ताला ने कुरान की आयतें उतार दी। सच में हो तो ये होगा, कहती मेरी माँ खुशी कहेंगी उठ नबी सल्लम का शुक्रिया अदा कर। कहा इनका मैं क्यों करूँ, लाड दिखाती थी। कहती मैं अल्लाह का करूंगी जिसने इनके ऊपर आयतें उतार दी। और इस तरह से वहां मक्का में जो अब उस एक वाक्य को बेस बना के, एक मुस्लिम सोसाइटी में मुस्लिम्स के दूसरों के साथ क्या ताल्लुक आता है, उसको अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बयान किया। पढ़ेंगे इकट्ठा और इसकी तफसील आप बाद में सुनेंगे अगर आप चाहें। एक एक आयत के ऊपर घंटों घंटों बात हो सकती है, लेकिन इतना वक्त नहीं है कि हम इतना वक्त दे सकें। तो फरमाया आयत नंबर 11 से आयत नंबर 11, इन्नल्लज़ीना जाऊ बिलफ़्की उसबतुम मिनकुम ला तहसबूहुम शर्रुल्लकुम। जो लोग ये बख्तान घड़ लाए हैं वो तुम्हारे अंदर ही का एक टोला है, अपनों से बात निकलती है याद रखिए। गैर तो बाद में बातें करते हैं, बाहर वालों से ज्यादा अंदर वाले नुकसान देते हैं। इस वाक्य को अपने हक में शर न समझो, ये भी तुम्हारे हक में खैर है। ये कितनी बड़ी बात है, उस वक्त ये हजम हुआ होगा जुमला कि नहीं नहीं इसमें खैर है। आप कहते हैं कैसे खैर है, मुझे तो हिकमत नहीं समझ आ रही। हिकमत ये थी कि कुरान में रहती दुनिया तक आयशा की बेगुनाही साबित हो गई, और अल्लाह ने उस कानून को कैसे खूबसूरत तरीके से पेश किया। जिसने इसमें जितना हिस्सा लिया इसने उतना ही गुनाह समेटा। मतलब अब्दुल्ला बिन उबई ने तो बात शुरू की थी उसको तो हो गई, लेकिन जो दूसरे मुसलमानों ने इसमें कुछ जुमले बोल दिए उनको भी इसमें उतना ही गुनाह होगा। और जिस शख्स ने इसकी जिम्मेदारी का बड़ा हिस्सा अपने सर लिया यानी अब्दुल्ला बिन उबई, उसके लिए तो अजाब अजीम है। जिस वक्त तुम लोगों ने इसे सुना था इस वक्त क्यों ना मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों ने अपने आप से नहीं गुमान किया, और क्यों ना कह दिया कि ये तो खुला बहतान है। ये लोग अपने इल्जाम के सबूत में चार गवाह क्यों ना ले आए। हाईलाइट कीजिए, बेहतरीन अदब है जब कभी किसी की बेटी बहू लेट बेटे बेटी की कोई बात सुने ऐसी, तुम्हें सुना है तुमने पता है क्या हो रहा है उधर अंदर, तो फौरन खामोश हो जाए उनको रोकने के, सॉरी आई विल नॉट लिसन दिस, प्लीज आप खामोश हो जाए मुझे अच्छा नहीं लगेगी ये बात। खड़े हो जाए, शोर मचा दें, कह दें अच्छा मैं भी उनको फोन करके बताऊंगी, लेकिन नेक लफ्ज ना किसी का सुने। स्कैंडल्स फैलाने से सोसाइटी का सुकून बिगड़ जाता है। फिर मैं जबकि ये गवाह नहीं लाए तो अल्लाह ही के नसीक वो झूठे हैं। अगर तुम लोगों पर दुनिया और आखिरत में इसका फजल ना होता तो जिन बातों में तुम पड़ गए थे इसकी पादाश में बड़ा अजाब तुम्हें आ लेता। जरा गौर तो करो उस वक्त तुम कैसी गलती कर रहे थे। इस आयत को हाईलाइट कीजिएगा 15, इस तलक़ौनहु बिअलसिनतिकुम व तक़ूलून बिअफ़वाहिकुम मा लैसा लकुम बिही इल्म। जबकि तुम्हारी एक जुबान से दूसरी जुबान इस झूठ को लेती चली जा रही थी, और तुम अपने मुंह से वो कुछ कहे जा रहे थे जिसके बारे में तुमको कुछ इल्म भी ना था। तुम इसे एक मामूली बात समझ रहे थे, हालांकि अल्लाह के नजदीक ये बहुत बड़ी बात थी। 3 सेकंड तक अपना मुहासबा कीजिए। क्या मैं सुनी सुनाई बात को आगे कर देती हूँ। हदीस में आता है कि जिस कफा बिलवारी का सिवा, किसी आदमी के जहन्नमी या झूठा होने के लिए ये काफी है कि हर सुनी सुनाई बात को आगे कर दे। तो जुबान की हिफाजत करनी, कभी ऐसी बातों को आगे नहीं करना वहीं छोड़ दें। ये मामूली बात नहीं है किसी औरत के ऊपर बात करना, किसी की इज्जत पे हर्फ लगाना। क्यों ना इसे सुनते कि तुमने कह दिया, हमें ऐसी बात जुबान से निकालना ज़ेब नहीं देता। सुबहान अल्लाह, ये तो एक बख्ताने असीम है। अल्लाह ताला तुमको साफ नसीहत करता है कि आइंदा कभी इस हरकत को दोहराना नहीं। अगर तुम मोमिन हो, अल्लाह तुम्हें साफ साफ हिदायत देता और वलीम व हकीम है। अब यहां से एक मोटिव जो आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और वो क्या कि सबसे ज्यादा बेहया ईमान वालों में फैले, इसको हाईलाइट कीजिएगा। इन अल्लज़ीना युहिब्बून अन तशी अल्फाखिहतु फिल लज़ीना आमनु लहुम अज़ाबुन अलीम। जो लोग चाहते हैं ईमान लाने वालों के गिरोह में फुहश फैले, वो दुनिया और आखरत में दर्दनाक सजा के मुस्तहिक हैं। अल्लाह जानता और तुम नहीं जानते। अगर अल्लाह का फजल और इसका रहम करम तुम पर ना होता और ये बात ना होती कि अल्लाह बड़ा शफीक और रहीम है, तो वो चीज जो अभी तुम्हारे अंदर फैलाई गई थी बदतरीन नतायज दिखा देती। ये है मोटिव आज के कुफर का। खास तौर पे ईमान वालों में बेहयाई फैले। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बेहयाई ईमान की दुश्मन है। जब बेहयाई फैलेगी, इनके ईमान कमजोर होंगे और ईमान खत्म होगा। आज आप देखिए कहाँ कहाँ आप इस आयत को फिट नहीं कर सकते। आज औरत सब्जी से सस्ती हो गई, गाजर मूली महंगी होगी, औरत उससे सस्ती। हर एड पे औरत, बरहना औरत। औरत को तो इन्होंने कमोडिटी बनाकर पेश कर दिया। ब्लेड नहीं बिकता जब तक औरत को ना दिखाएं, टूथपेस्ट नहीं बिकता जब तक औरत ना दिखे, और इतने लंबे लंबे पोस्टर्स लगा के हमने लोगों के सरों पे औरतों को खड़ा कर दिया। चारों तरफ आपको बेहयाई दिखेगी। वजह क्या है कि नजरें गंदी हो। वो एड जो इसके अंदर पहले लोग छुपाते थे, अब रोड्स पे एड लगाए दिखा देंगे, दो बच्चे खुशहाल कराना। फैमिली प्लानिंग, कभी आपने लेडीज की पर्सनल चीजों के एडवर्टाइजमेंट सड़कों के किनारे आज तक नहीं देखी थी। अखबार में अगर कहीं होती थी तो तस्वीर नहीं होती थी, ऐसे ही कुछ शुबा डाल देते थे और लोग नाम से समझ जाते थे ये अंडर गारमेंट्स की तस्वीर है। आज आपको अपने मुल्कों के बोर्ड्स के ऊपर पैड्स की तस्वीरें दिखेंगी। कभी आप सोच सकते हैं ये किसका प्रोपेगेंडा? और मुझे लगता है अकली मारी गई हम सबकी। ऐसी मार्केटिंग का धुन सवार हुई कि इनसे चीजें बिकती हैं। इतने बड़े बड़े बिल बोर्ड है। मैं कहती हूँ अगर आज किसी को, अगर आप अपनी मार्केटिंग की स्किल्स को जायज करा के अल्लाह ताला के यहाँ उसको सुरखरू कराना है, तो इस चीज को आम कीजिए कि इस गंदे बोर्ड्स को खत्म करो। और गैर मुल्कों में तो हम क्या करें कि वहां हर बस स्टैंड के साथ गंदी तस्वीर लगती है। एक ऐसे मुल्कों में जानती हूँ कि बस स्टैंड जहां उनके मुल्क के 90% लोग रोज खड़े होते हैं किसी ना किसी वक्त में, गाड़ियों में सफर करने लिए शायद 5%, और बच्चे बड़े अकेले बच्चे गाड़ी बसों में सफर करते हैं। इतना कॉमन रूट है, लेकिन उनके जो बूथ हैं जहां खड़े होकर वो बस का इंतजार करते हैं, वहां हर हफ्ते तस्वीर बदल जाती है। कभी वो कोई एशियन वाले और कभी फला, और इतनी गंदी तस्वीरें, और जहां क्लोज खड़ी इतनी बड़ी तस्वीर है कि दूर से देखना, वो तो उस बोर्ड को टेक लगा के खड़े होते हैं। कभी सोचा आपने बच्चों में क्या होगा? जवान लड़के इसको देखकर क्या सोचते होंगे? क्या मैं और आप खामोश रहे? क्या हम आप इस न्यूडिटी के खिलाफ गैर मुस्लिम मुल्कों में भी नहीं बोल सकते? क्या ये औरत का हक नहीं है कि उसको नंगा होने से रोका जाए? मर्दों को क्यों नहीं करते? वो भी कर लेंगे, अगला वक्त आएगा तो। औरत से बच जाएंगे तो वहां चल पड़ेंगे। लेकिन याद रखिए, एक औरत होने के नाते, चाहे वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम, उसमें ये ग्रज होना चाहिए, उसमें ये गुस्सा होना चाहिए कि मुझे कुछ करना। इसके लिए लिख सकते हैं तो लिखें, बोल सकते हैं तो बोल सके, इसके ऑल्टरनेट्स दीजिए, क्योंकि इसी से फिर नस्लें गंदी हो रही हैं। पहले क्यों गंदगी आम नहीं थी? पहले मर्द क्यों गंदे मुतालबे नहीं करते थे? इसलिए कि चारों तरफ गुनाह की दावत देने वाली चीजें, कंप्यूटर से लेकर, चले कंप्यूटर तो कोई खोलेगा तो देखेगा, यहां तो आपको जाना ही पड़ेगा। ड्राइवर रोड्स पे जाते हैं, हादसे होते होते बचते हैं, इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें, तो ये तरीके बंद करने की जरूरत है। आप देखिए लोग कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, चलो जी कुछ नहीं होता। कुछ लोगों को तो वेस्ट वाले इतने अच्छे लगते हैं, वो हर बात में उनको दिफा करते हैं, कहते हैं देखो वो मुनाफिक तो नहीं है, तुम्हें क्या पता सऊदी अरब में क्या होता है, तुम्हें क्या पता ये बुरकों के अंदर क्या है। तो नाउज़ुबिल्लाह, आपको बुरके के अंदर देखने की इजाजत है? क्या आप किसी के कपड़ों के नीचे झांकेंगे कि उसने अंदर क्या पहना हुआ है? शुक्र कीजिए अंदर पहना हुआ है। आपको क्या लगे उनके, आपको क्या पता उनके घरों में क्या होता है? शुक्र करो घरों में। देखिए आप इमेजिन कीजिए किसी मुल्क में गटर है, जैसे मेन होल्स होते हैं या जो भी ड्रेनेज है, तो वो उसको बंद करके ढक्कन लगा दें, तो लोग देखो कितने मुनाफे के, गंदगी को ढक्कन लगाए हुए। खोलो, हम कितने लिबरल और हम कितने ब्रॉड माइंडेड है, हम तो गंदगी को खुला छोड़ देते हैं। अच्छा लगेगा, बू आएगी ना, ताफुन आएगा। तो वो गटरों की गंदगी ज्यादा है या ये दूसरी गंदगी ज्यादा है? हमें अपने मुल्कों के गंदे उबलते हुए गटर तो दिखते हैं कि वहां तो गटर उबल रहे हैं, तो बाहर जाते हैं हम तो देखते हैं तो हमें ये चीजें नहीं दिखती। तो इसके लिए एक्शन लेने की जरूरत है। इसको अल्लाह ताला ने यहां में रख के क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान। ऐ लोगो जो भी ईमान लाए हो शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो, इसकी पैरवी कोई करेगा तो इसे फुहश और बदी का हुक्म देगा। अगर अल्लाह का फजल और इसका रहमो करम तुम पर ना होता तो तुम में से कोई शख्स पाक ना हो सकता था, मगर अल्लाह ही जिसे चाहता है पाक कर देता है और अल्लाह सुनने और जानने वाला है। तो लिहाजा अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें शैतानी कदमों से बचाए, शैतान के तौर तरीकों से बचाए की चॉइस थी। अब यहां से अबू बकर की बात, जब बेटी पे इल्जाम लगाया उस शख्स ने जिसको आप खुद पाल रहे थे, जो इसके आप कफील थे, टेक केयरर थे, तो हजरत अबू बकर को एक बाप होने के नाते गुस्सा आया, कसम खा ली आज के बाद मस्तों को एक पैसा नहीं दूंगा। जायज थी, बेटी का बाप होने के नाते तो इस 100% रो, लेकिन मुकामे सिद्दीकियत से एक हल्की बात थी। अल्लाह ताला ने कह दिया तुम में से जो लोग साहिब फजल और साहिब कुदरत हैं वो इस बात की कसम न खा बैठे कि अपने रिश्तेदार मिस्कीन और मुहाजिर फी सबीलिल्लाह लोगों की मदद ना करें, इन्हें माफ कर देना चाहिए और दरगुजर करना चाहिए। अला तुहिब्बुना यग़फिरल्लाहु लकुम, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे? वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला खूब बख्शने वाला और रहम वाला। जब ये आयतें उतरी तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा यस अल्लाह, हम चाहते हैं कि आप हमें माफ करें। ना सिर्फ ये कि मस्तों को माफ किया जो वजीफा दे रहे थे वो, या उससे ज्यादा और देना शुरू कर दिया। 3 सेकंड जरा सोचे, अबू बकर की जगह अल्लाह ना करे हम में से कोई हो, हमारी बेटी पे कोई इल्जाम तो लगा दे, और हमारी बेटी आयशा जैसी भी पाक दामन नहीं होगी, हो सकता है इल्जाम की 5% वजह भी समझ आए लोगों को, लेकिन हम कभी उसको माफ करें? जी ऐस जन्नत के सौदागर कि जिनको जन्नतें पानी होती है ना, वो अपनी अना को पर नहीं समझते, फौरन माफ कर देते हैं। अब एक सोसाइटी में ऐसे मामलात पे क्या रिएक्शन होना चाहिए? जो लोग पाक दामन बेखबर मोमिन औरतों पर तोहमतें लगाते हैं, इन पर दुनिया और आखिरत में लानत की गई और इनके लिए बड़ा साफ है, वो इस दिन को भूल ना जाए जबकि इनकी अपनी जुबानें और इनके अपने हाथ पांव इनके करतूतों की गवाही देंगे। इमेजिन करें, हाथ बोल रहे हैं, जुबान बोल रही है कि ये करता था, ये गलत काम करती थी, और इस दिन अल्लाह वो बदला इनको पूरे का पूरा देगा जिसके वो मुस्तहिक हैं, और इनको मालूम हो जाएगा कि अल्लाह ही हक है, सच को सच कर दिखाने वाला। तुलखबीसात लिलखबीसीन वलखबीसून लिलखबीसात, खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए हैं और खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए, पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए हैं और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए। इनका दामन पाक है इन बातों से जो बनाने वाले बनाते हैं, और इनके लिए मगफरत है और रिज़्क़े करीम। बड़ी खूबसूरत आयत है। एक तो रिश्तों का मेयार है, बेटा पाक है तो नेक है, नमाजी है, नेक बच्ची लाइए, बेटी नेक है, साफ पाक है, नेक रिश्ता ढूंढिए, जब आएगा मिल जाएगा, डोंट वरी एट ऑल। लेकिन अगर आपका बेटा शराबी पापी है तो मत किसी की नेक बच्ची लाए, और कि ये बच्ची खुद ही इसको ठीक कर लेगी। आप कहते नमाजी और बेनमाजी का रिश्ता जुड़ता ही नहीं है, निकाह होता ही नहीं है। अब आप बोलिए, जब हम शादियां करते हैं और उस वक्त ये तक नहीं पूछ रहे कि शादी है कि नहीं, लड़का नमाजी है कि नहीं, घर कैसे पनपेगा? अल्लाह ने नमाज और जिना को इतना साथ जोड़ के पेश कर दिए कि जब वो हदीस पढ़ते हैं तो फिक्र लग जाती है कितने जोड़े हैं जो जायज जिंदगी गुजार भी रहे हैं कि नहीं। इस वक्त की जनरेशन से जो ऊपर की पेरेंट्स के भी ऊपर के लेवल के, उनके अंदर ये बहुत खराबी आई। माँ बाप इतने कॉम्प्रोमाइजिंग हो गए रिश्ते करते वक्त, उन्होंने पूछा नहीं। ऐसी औरतें आज भी नासूर गुजार रही हैं जिंदगी का कि जहां मर्द शराबी हैं और औरतें 5 वक्त की नमाजी हैं। तो भी क्या हुआ? नहीं, कहा ये था उन्होंने इस घर से अब तुम्हारी लाश जाएगी, तुम्हारी मैयत जाएगी। भैया आप 35 साल हो गए अपने मर्द को बर्दाश्त करें, अब क्या पूछने आई है मुझसे? क्या ख्याल है अब मैं थक गई हूं, मैं तलाक ले लूं? अब बहुएं भी आ रही हैं घर में, दामाद आते हैं, ये शराब के गुल गपाड़े में मेरी बेइज्जती करते हैं, मैं नहीं रह सकती। मैंने कहा सिस्टर 35 ईयर्स, बड़ी देर की आपने। कहती मैंने सोचा ठीक हो जाएंगे, ठीक सारी जिंदगी बर्दाश्त करती रही। ये जिंदगी नहीं है, ये इस्लाम नहीं है, ये कुफर है। अल्लाह ना करे किसी बुरे से वास्ता पड़ गया, फौरन निपट लीजिए। एक बच्चा, दूसरा बच्चा, 4 बच्चे, सारी। और सिर्फ ये बात, लोग क्या कहेंगे? लोगों का खौफ है कि अल्लाह का? कई लोग आज हराम की जिंदगी बसर कर रहे हैं सिर्फ लोगों के डर से। तो ये भी एक सोच बदलने की बात है। ये दुआ तो आप दे सकते हैं अपनी बच्चियों को कि बेटा इस घर से अब तुम्हारा जनाजा जाए, यानी मरते दम तक तुम्हारा जोड़ निकले, लेकिन ये रूल नहीं है। पहले ही रिश्ते अच्छे करे नहीं है तो अल्लाह कहते फिर खबीस खबीस है। गंदे मर्द हैं, गंदी कर दो, लड़की नमाजी नहीं कर दें जिससे मर्जी, वो भी नमाजी नहीं, वो भी नहीं, दो नॉन मुस्लिम का भी तो होता है, दो बेनमाजियों का कर दो। तो लिहाजा इसमें हजरत आयशा और नबी सल्लम की तरफ भी इशारा है कि जिन्होंने आयशा पे तोहमत लगाई उन्होंने एक लम्हे के लिए ये नहीं सोचा कि आयशा बीवी किसकी है। एक तैयब मर्द की बीवी क्या खबीस हो सकती है? तो इसी से समझ जाते हैं कि आयशा ने ये काम नहीं किया। इसके बाद अब देखिए आयत नंबर 27 से लेके आगे तक, बीच में आयते नूर और चंद एक दो छोटी छोटी चीजें एक्स्ट्रा हैं, अदरवाइज बाकी सब का टॉपिक लीजिए सद्दे जराए जिना, यानी जिना को रोकने के मीन्स, वो सोसाइटी के मैयर्स कि जिनके बाद किसी सोसाइटी से अडल्ट्री और करप्शन और गंदगी का खत्म होता है, उसमें पहली चीज क्या है कि लोगों के घरों में इजाजत लेकर जाओ। बहुत ही खूबसूरत माशर्ती काम आता है, आज इन पे अमल करें तो घरों में भी सुकून होगा और इंशाल्लाह बाहर भी होगा। क्या या अय्युह अल्लज़ीना आमनु ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम, ए लोगों जो ईमान लाए हो अपने घरों के सिवा दूसरों के घरों में दाखिल ना हुआ करो, जब तक के घर वालों की रजा न ले लिया करो और घर वालों पर सलाम न भेजो, ये तरीका तुम्हारे अपने हक में बेहतर है, तवक्को है कि तुम इसका ख्याल रखोगे। हाँ अगर वहां तुम किसी को ना पाओ तो दाखिल ना हो जब तक कि तुमको इजाजत ना दी जाए, और अगर तुमसे कहा जाए कि वापिस चले जाओ तो वापिस चले जाओ, ये तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीजा तरीका है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इसे खूब जानता है, अलबत्ता तुम्हारे लिए इसमें कोई हर्ज नहीं। कैसे घरों में दाखिल हो जाओ जो किसी के रहने की जगह ना हो और जिनमें तुम्हारे अपने फायदे या काम की कोई चीज हो, तुम जो कुछ जाहिर करते हो और जो कुछ छुपाते हो अल्लाह को सबकी खबर है। कितने खूबसूरत तरीके से होम स्वीट होम का नसरिया दिया। देखिए समझ लीजिए घर जो है ना, बात या भी तो बैतन अरबी में बैत कहते हैं, वो जगह जहां सुकून मिले। अब घर प्राइवेसी के लिए होता है, घर में इंसान लाइट मूड में होता है, लाइक घर के अंदर इंसान कभी साफ होता है कभी गंदा होता है, कभी हल्के कपड़ों में होता है, कभी उसने कंघी की है कभी उसने कुछ नहीं किया। अब मुंह उठा के लोग चल पड़े, और उस दौर में तो दरवाजे भी नहीं होते थे घरों के बाहर, घरों के आगे पर्दे भी बस दफा नहीं होते थे, तो जानवरों की तरह एक दूसरे के घरों में घुस जाते थे। आज भी बस देहाती लोग इसी तरह करते हैं, मना कर दिया, अदब सिखा दिए, आप अपने ऊपर ले, और दूसरी का कि अगर जो और कोई कह दे अभी इस वक्त ना आइए तो गुस्सा ना करो, खुश हो। एक साबिते कहते थे सारी जिंदगी शायद पर अमल की कोशिश की है कि मैं किसी के घर जाऊं और मैं कहूं मैं और मुझे कह दे कि अभी चले जाओ इस वक्त नहीं बाद में आना, और मैं इस आयत पे अमल करते हुए बाहर आ जाऊं। हम तो सौ सौ बातें सुना दें। हमारे कल्चर में आप देखिए कि किसी के घर जाने से पहले आप फोन कर लेना, मैं आ जाऊं आपके घर आई हुई थी, कहते बड़े अमेरिकन बन गए आप, पूछ के आते हैं आइए जी आइए। ये बात देखिए मैनर्स गैरों ने हमसे ले लिए, तो अब यहाँ बाहर की बात है, आगे एक आयत आएगी जिसमें घर में रहने वाले एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते वक्त भी मैनर्स है, कभी किसी के घर में मुंह उठा के ना जाए। अल्लाह कहते वो कह दे कि आ जाओ तो आ जाओ, नहीं कहे तो चले जाओ, कोई आगे नहीं मिलता फिर भी चले जाओ। कोई चीज ऐसी जहां आपका सामान है, मसलन जैसे आप देखिए कि होटल्स हैं वहां उन्होंने ओपन का साइन खोला हुआ है, हॉस्पिटल्स हैं जहां आपकी जरूरत है, मोटेल्स हैं, या आपका स्टोरेज कहीं रखा हुआ है, या किसी ने अपनी चाबियां आपको दी हुई हैं कि आपको जब भी जरूरत पड़े आप मेरे घर में आ जाए, मैं घर पे नहीं हूँ, वहां जाकर भी सलाम करके दाखिल हो। और यहाँ एक और मैं याद रखिए, अपने भी घर में जाए तो सलाम करें, खाली घर में सलाम करें, हदीस में आता है कि फरिश्ते जवाब देते हैं। घर में शौहर भी सहाबा कराम आते थे अपने घरों में, सिर्फ बीवियां होती थी तो सलाम करते थे, बाजवा हादसे होने का डर होता है, आप समझे घर में कोई नहीं, आप गए जल्दी से जाके आपने हिजाब निकाब उतारा और आप रिलैक्स हो, एकदम अंदर से आपका कोई रिश्तेदार निकल आया जो घर में आया हुआ था, आप घबरा भी जाएंगी, आप उसकी नजर पड़ सकती है, आप एक बापरदा खातून है। तो ये खूबसूरत मैं इस्लाम इतना डिसेंट रिलीजन है कि लोगों को चाहते अपने घर में अमन से रहो, घर में कुछ भी बंदा कर सकता है, एकदम कोई आएगा खबर फैल जाएगी, अफवाह फैलेगी, अच्छा कोई आया हुआ था, कोई गया हुआ था, हम गए तो कोई था, किस तरह से बातें फैलती हैं, उससे फिर लोगों में बुराइयां आ जाती हैं। मर्दों को हुक्म दिया गया قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، اے نبی مومن مردوں سے کہو اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزہ طریقہ ہے اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے خوب خبر رکھتا ہے۔ مردوں سے اس موضوع کو شروع کیا گیا، پردے کا موضوع جس کو لوگ کہتے ہیں نا، اصل میں یہ کون سا پردہ ہے؟ آنکھوں کا پردہ۔ مرد کیا پردہ کرے؟ نمبر ایک نظریں جھکا کے رکھے، اور جہاں مرد نظریں جھکا لیتے ہیں یا اندر آتے جاتے میں اجازت لیتے ہیں، औरतों के लिए पर्दा करना इतना आसान और इतना रिलैक्सिंग होता है कि उसका कोई अंदाजा ही नहीं है। वजह क्या, मर्द आए सलाम किया पहले अलर्ट हो गए, आप चादर ठीक कर लें ढीली कर लें, आप रिलैक्स होके बैठे, आप घर में भी किसी के सामने पर्दे के साथ हैं तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। और मर्द क्या करे, नजर झुकाए, कौन सी नजर, शहवत वाली, एक नजर पड़ती है गाड़ी चला रहे हैं जरूरत में किसी से बात करें इट्स ओके, फौरन नजर को बचा लें, दैट्स इट। अब मर्द को ये निकाह गया कि चेहरे पे निकाब डालो, तो क्यों डाले, वो कोई इतने हसीन होते हैं कि चेहरों पे निकाब डाले, बस औरतें बड़ी परेशान है, मर्दों को क्या कहते कितना और हमें लंबी लिस्ट है। चलिए आपकी लिस्ट भी सुनाती हूँ, फिर टैली कर लेते हैं किसके साथ अल्लाह ने ज्यादा मामला किया। वकुल्लिल मोमिनाति यगदुत्न मिन अबसारिहिन्न व यक्फस्न फुरूजहुन्न वला युब्दीन ज़ीनतहुन्न। और ऐ नबी, मोमिन औरतों से कह दो अपनी नजरें बचा कर रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। इतनी बातें तो कॉमन है ना, बराबर इक्वालिटी है, मर्द औरत को एक सफ में खड़ा किया। औरत को कुछ एक्स्ट्रा चीजें कह दी कि अपना बनाव सिंगार ना दिखाएं, बज उसके के जो खुद जाहिर हो जाए, जिन्हें जिसको छुपाना मुमकिन ही नहीं है। बाज दफा छुपाने के बावजूद इंसान के नहीं छुपते, हाथ खुल जाते हैं, बाज दफा पाँव का कुछ हिस्सा खुल जाता है, बाज दफा अबाए के ऊपर अबाए का रंग खुलता है। अब ये नहीं कि इसमें मोती सितारे लगा ले, चमक दमक रख ले, लेकिन आम हालात में छुपता नहीं, कद नहीं छुपता, काट नहीं छुपता, जिसामत नहीं छुपती। जिस हद तक कर सकते हो कर लो, जो नहीं छुप सकता उसको अल्लाह ताला माफ करे। खुद जाहिर हो, जाहिर करना नहीं है, और अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियों के आंचल डाले रखे। दुपट्टा लेने का तरीका सिखाया जा रहा है। जिस माशरे में जाते उतरी वहां औरतें क्या करती थी, अगर आप में से, सिर्फ समझाने के लिए नाम लूंगी, कश्मीरी औरतों को देखा होगा, जो बहुत वो कैलाश टाइप के इलाके में जहाँ बड़ी खूबसूरत सी औरतें होती है ना, तो आपने देखा होगा उन्होंने चादरें जो होती है ना मोटी मोटी लेके पूरी करके ना, तो उसको पीछे डाल देती हैं, सर पे पूरा दुपट्टा बांधा। फिर जैसे समटाइम हमारे पाकिस्तानी कल्चर, इंडियन कल्चर में कुछ लोग वजू करते वक्त दुपट्टा लेते हैं और कहते हैं दुपट्टा ना ले तो वजू होता ही नहीं है। ऐसे लोग बैठ जाते हुए ले ना ले, वजू करते वक्त जरूर लेंगे और फतवा भी जरूर देते हैं कि भाई करें। अच्छा, वो क्या करती थी कि सर पूरा छुपाती, पूरे सर के बाल छुपा के, लेकिन गला खोलती, आगे सीना खुलता, बुंदे भी पहन लेती, हार भी पहनती। इसका जिक्र आगे हम सूरत अल अहज़ाब में पढ़ेंगे। लेकिन दुपट्टा पीछे से वो रस्सी सी बना के चुटिया के साथ पीछे करती, यानी सीना खुल जाता। तो अल्लाह ने कहा ये इज नॉट राइट वे टू डू दिस। क्या करो, अपने दुपट्टे के पल्लू सीनों पे डालो। सीने पे कैसे डालेंगे, बिखुमुरी होना। आप देखिए कि यहाँ जो लफ्ज है ना, इस पे सामने नजर रखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह समझ आएगा। बल यद्रिबन बिखुमुरी हिन्ना लाजुजुबी हिन्ना। और चाहिए कि अपनी ओढ़नियों के आंचल सीनों पे रखें। तो लोग कहते हैं देखो सर पे लेने की तो बात ही नहीं कही। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि खुमर किसको कहते हैं? अल खुमरु मा खामर अल अकल, सर के कपड़े को कहते हैं। आप अपने बच्चे से कहें, आप जरा इमेजिन कीजिए, आप थोड़ा सा हंस लें, थोड़े उदास लग रहे हैं मुझे। आप अपने बच्चे को कहती हैं चलो जल्दी से दस्ताने हाथों में पहन लो, और देखो मोजे पाँव में पहनना, और देखो टोपी सर पे पहनना। वो कहेगा अम्मी आपको क्या हो गया, मुझे पता है मोजे का पहनते हैं, मुझे पता है दस्ताने का पहनते हैं, मुझे पता है टोपी का पहनते हैं। कभी आपने कहा कि जरूर दस्ताने हाथ में पहनो, सबको पता है। तो खुमर कहते ही सर के कपड़े को है। लोग कहते हैं किधर दुपट्टा है, इस्लाम में तो दुपट्टा है नहीं। अल्लाह ने तो जन्नती औरत के दुपट्टों की बात की है कि जन्नत की औरत का दुपट्टा इतना हसीन होगा कि अगर उसका एक कोना आसमान से आ जाए तो उसकी चमक जो है वो सूरज को मंद कर दे। तो दुपट्टा लेने का तरीका, इसी से फिर आज के दौर में स्कार्फ और हिजाब का तरीका। बस दफा हमारी सिस्टर्स माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, अगर इंटरफेस है दैट इज एक्सीलेंट, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं करूंगी, लेकिन ये गोल नहीं है। आप गले में दुपट्टा नहीं लेते थे, अब गले में लेने लग गए अल्हम्दुलिल्लाह। गले में लेते थे, अब जरा खोल के लेना शुरू कर दिया, बहुत अच्छा। उसको सर पे ले, और जो हमारा देसी स्टाइल था आज तो खत्म हो गया, वो जो बटा हुआ दुपट्टा होता था चुंटे डला हुआ, और उसको किसी के आते गए से पकड़ के बड़े प्यार से सर पे ले लेते थे। ना सर छुपा, ना गर्दन छुपी, ना बस बीच की इतनी पट्टी छुपती, दुपट्टा ले लिया। और कब लेते थे हम, जब अजान की आवाज आती थी, है ना, और वो शादी हॉल में बैठे और मौलवी साहब ने निकाह शुरू किया तो मैंने खुद औरतों को देखा टिश्यू पेपर पकड़ के ये मेरे अपनी आंखों देखा वाकया है। एक ऐसी भी थी जिनका अपना दुपट्टा था भी तो बड़ा टका टुका था, उधर लगे थे तो दूसरी को कहा इधर, उसको पकड़ के उसका कोना अपने सर पे कि निकाह ही ना टूट जाए अगर दुपट्टा गिर गया। कैसा खेल खेला हमने पिछली सदी में, गैर शौरी दी नाम की। पर्दा भी दिखाया तो लोगों को ऐसा ही दिखाया, सारे बाजार में काला बुरका मुंह खोल के फिर रही है, जहां अब्बा जन को आते देखा फौरन घूंघट डाल दिया, अब्बा जी आ गए जल्दी से दुपट्टा आ गए, वो नकाब कर लो। जो अबाए पहने औरतों ने वो क्या पहने, कमीज के ऊपर एक और कमीज, फिटेड कमीज, घुटनों तक काला अबाया और ऊपर एक काला बुरका जिसपे पतले से शिफोन के निकाब थे। सच्ची बात है, हमने हिकमत समझी नहीं। अल्लाह सुबहान तआला कोई काम बेवकूफी से करना नहीं सिखाता। जिस चीज का जो मकसद है उसको हासिल कीजिए। अल्लाह तआला ने आपको मुझे यहाँ क्या दिखाया कि देखो तुम अपने सीने को छुपा दे, कि कौन नहीं ये जानता कि औरत के सीने में कशिश है। मर्द तो मर्द, औरत में औरत का जिस्म खुलता है तो नजर पड़ती है, कहां किसी गैर की बात है। अल्लाह ताला ने कहा सीने छुपाने के लिए होते हैं, अल्लाह ने सीने में नस्लों की खुराक रखी हुई है, बच्चे की ये फूड फैक्ट्री है जिसको अल्लाह कहता है छुपा के रखो, खुला दूध होता है तो खराब होता है, मक्खियां बैठती हैं, जब औरतों के सीने खुलते हैं तो उन नस्लें वीरान हो जाती हैं। अल्लाह ताला ने ये तरीका सिखाया। अब आप कहते हैं कि ऐसा ऐसा हम अच्छे तरीके से करें, इट्स फाइन, स्कार्फ स्कार्फ ले लिया, अच्छा ले लिया कर ले, लेकिन अब उसको इतना पिनअप कर लिए, कर ले लेकिन फिर नीचे एक खुला दुपट्टा लें, आप अच्छे मैचिंग स्कार्फ पहने, जो भी कर रहे हैं बाहर जा रहे हैं जहां भी है तो उसको ढीला ढाला रखें। इस बाहर के पर्दे को हम सूरत आफ़ताब में डिस्कस करेंगे, इसलिए आप रिलैक्स रहें, डोंट वरी, उस दिन छुट्टी कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ देखिए फर्क समझिए, सूरत अल अराफ में हमने ये टॉपिक सुना था, वो कहता है लिबास जस्ट लाइक एज अ ड्रेस कोड, कोई अपने घर में भी क्या पहनता है, जस्ट ड्रेस, जो मैं कपड़े पहनू आप पहने वो। यहाँ के घर के अंदर रहते हुए महरम रिश्ते, ये लिख लीजिए, एक बेटी बहू माँ बहन जो भी अपने घर के मर्द जो महरम है उनके सामने क्या पहने, क्योंकि आगे लिस्ट आने लगी है सूरत अहज़ाब में होगा। अब घर से खैर से बाहर जा रही हैं तो क्या पहने, इन तीनों को जमा करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी समझ आएगा। तो घरों में भी बाप हैं भाई हैं बेटे होते हैं, इन रिश्तों के सामने किस हद तक खोलना है किस हद तक नहीं खोलना, अब इसलिए इसको अगली आयत में इसी हिस्से में आगे देखिएगा, फरमाए वो अपना बनाओ सिंगार जाहिर ना करें मगर इन लोगों के साथ, शौहर बाप शौहरों के बाप अपने बेटे शौहरों के बेटे, भाई भाइयों के बेटे बहनों के बेटे, अपने मेलजोल की औरतें अपनी लौंडी गुलाम, और वो जेरे दस मर्द जो किसी और किस्म की गरज न रखते हों, और वो बच्चे जो औरतों की पोशीदा बातों से भी अभी तक वाकिफ ना हो। क्या पता चला ये लंबी लिस्ट, और हर एक के साथ कितना खोलना है सबको पता है, सबसे ज्यादा शौहर हकदार है आपकी खूबसूरती का। अब जितना शौहर के सामने आप खुल सकते हैं बाप के सामने उतना नहीं खुल सकते, शौहर के सामने आप जिस हाल हुलिये में आना चाहिए आपको पूरी चॉइस है, आप उस हुलिये में भाई के सामने नहीं आ सकते, बाप के सामने नहीं आ सकते, कुंवारे भाई हैं छोटे भाई हैं बड़े भाई हैं, लेकिन देखिए इसका ताल्लुक हयात से होता है। आप इस तरह सोचिए, मैं सिर्फ आपको फर्क समझाने के लिए कि शायद इससे हमारे दिल में इस चीज को आए, गोश्त किसको अच्छा लगता है, कसाब की दुकान पे कच्चा गोश्त लटकता है अच्छा लगता है, घिन आती है ना, अक्सर आप वहां से गुजरे तो मक्खियां बैठी दिखेंगी, स्मेल भी आएगी। आजकल तो जो अच्छी दुकानें होंगी उन्होंने गोश्त के ऊपर फिर मलमल के गीले दुपट्टे ही डाल दिए होंगे, तो मेरा और आपका जिस्म क्या ये गोश्त का तोता नहीं है। मैं कहती हूँ अल्लाह कितना तेरा शुक्र है तूने हमें लिबास दे दिया, अपने जिस्म को आप बगैर लिबास के देखें तो गोश्त का पहाड़ नहीं लगता, तो क्या इस गोश्त को बाहर दूसरों के सामने ले लेके फिरेंगे। चले बाहर की तो छोड़े, घर में रहते हुए जब हम चलते हैं उठते हैं बैठते हैं कि हमारे जिस्म का फिगर पोस्चर किस किस साइज के किसको पता चलता है। औरत का लिबास ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों भाइयों मर्दों बेटों को तक को पता चल जाए ये मोटी हो रही है ये इतनी हो गई ये वैसी हो गई। आज आप किसी खानदान के यंग लड़के से पूछिए फलां कजन कितनी, वो आपको कमर तक नाप के बता देंगे, रंग ऐसे बालों का रंग ऐसे, क्या एक औरत की ये शान है, क्यों, इसलिए कि इसी से भी खराबियां शुरू होती हैं। चले हम अपने आप को बहुत महजब कहते हैं, अभी तो वो दौर अल्लाह ना कभी हमें दिखाए, बातें तो शुरू हो गई हुई है, लेकिन हदीस में आता है क्यामत के करीब महरम रिश्तों में जिना होगा। वजह क्या कि जब इतना एक्सपोजर है तो किसी वक्त भी शैतान आ सकता है, शैतान बाप की नजर में भी आ सकता है भाई की बहन में भी आ सकता है, और सबसे बड़ी बात देखिए कि इंसान अपनी नजर से गिरता है, जब हमारा लिबास टाइट होता है और बहुत ज्यादा सी थ्रू होता है ना तो फिर हमारे पास रहमत के फरिश्ते नहीं आते, फिर इबादत को दिल नहीं करता। आप खुद फील करें, जुमे के दिन सुबह उठे नहाए धोए इतर लगाया कंघी की अच्छा सा खुला दुपट्टा लिए तो खुद ही दिल आता है चलो सूरत पढ़ लो, चलो दुरूद शरीफ पढ़ लो, चलो नमाज पढ़ लो, चलो जुम्मा पढ़ो, कपड़ों का हाल उलिए का कितना गहरा असर होता है। और जब आप जरा ऐसे कपड़े पहने जिसमें सतर भी बुरा नहीं तो जिक्र भी नहीं करने को दिल जाएगा, फिर कहेंगे लो इस हाल में कैसे पढ़ो, तो शैतान आएगा और प्लस फिर रहमत के फरिश्ते दूर होंगे, और अल्लाह ना करे अगर इस साल में मौत आ गई तो हमेशा लिबास ढीला ढाला और ऐसा पहनिए कि जिसमें न दिखे। और अगर आप कहें कि घर में शौहर बीवी है कर सकते हैं, लेकिन जज्बात के उभार के लिए थोड़ा वक्त काफी होता है, हर वक्त जो चीज आप एक्सपोज करेंगे उसकी भी अट्रैक्शन नहीं रहेगी, तो लिहाजा कभी गुनाह होता है कभी फवायद होते हैं। लेकिन यहाँ जो बात है वो ये, घर के मुलाजिम ड्राइवर हैं खानसाम हैं शेफ हैं और उसी के बीच में आप फिर रहे हैं, अल्लाह अकबर, आप कहते हैं ये गुलाम है ये गुलाम नहीं है, हट्टे कट्टे इतने मोटे ताजे घरों में फिर रहे होते हैं बहरे, और लोग उनके सामने होते कहते हैं अब इनको क्या करें, फिर जो खराबियां पैदा हो रही हैं आप जरा उसकी कहानियां तो सुने, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। तो बस वही हदीस बात करके आगे चलती हूँ, फैज लम तस्ता ही फस ना माशीता, जब तेरे अंदर हया ना रहे तो जो मर्जी कर, फिर ये हया ही रोकती है। पहली माओ ने कोई इतनी सूरत नूर की तफसीरें नहीं सुनी हुई थी, पहली हमारी नानियां दादियां जो थी उन्होंने कभी सूरत अल अहज़ाब नहीं सुनी थी, फितरत पे थी, और फितरत से पूछेंगे तो फितरत तो यही चाहती है कि इंसान अपने आप को छुपाए रखे। कितना रिलैक्सेशन मिलता है ना इंसान को ढीले ढाले कपड़ों में। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारी फितरत जो है वो सलामत रहे। फिर उसके बाद ए मोमिनो, तुम सब मिलकर अल्लाह से तौबा करो, तवक्को है कि फला पाओ। ये है उम्मत मुस्लिमा को मैसेज, इज्तमाई तौबा की जरूरत है। और वो कैसे, सिस्टम ऐसे बनाओ, घरों का माहौल ऐसा बनाओ, औरतों की जगह अलग रखो, मर्दों की अलग रखो। हमेशा आपने दिल्ली कह लीजिए या किसी पुराने मुल्क शहर को याद करें, ये जनान खाना, ये मर्दान खाना, ये औरतों का रास्ता, ये मर्दों का, हम सबका यही था पीछे। आज क्या हो गया, घरों के नक्शे ऐसे बन गए कि घर में बैठे हुए बाहर से ही आपको लोग देख लें, अंदर आने की तो जरूरत ही नहीं है। तो गैर महसूस तरीके से अब हया खत्म होती जा रही है। तो आप औरतों में औरतें हैं, आप अच्छे कपड़े पहने, ढंग के पहने, अदब के साथ पहने, नो प्रॉब्लम। और मर्दों को मर्दों में रहने दें। और औरत अपनी असल के एतबार से सिर्फ औरतों में खुश रहती है, ये आप माने ना माने। जहां औरत मर्द दोनों जमा कर दिए जाएंगे, वहां आप देखेंगे कि औरतें भी परेशान होती हैं और मर्दों को भी कुछ ज्यादा ही टाइम लगता है उस दिन घर से निकलते हुए, तैयारी नहीं पूरी हो रही, क्योंकि मसला कई देखेंगी और कई देखेंगे। और आज फिर इससे जो खराबियां हैं, अल्लाह माफ करे, बाद महफिल गजल में जो रोमांटिक शेर चल रहे होते हैं और जो फिर आंखें लगती हैं, फिर अपने मर्द में वो ख्वाहिश नहीं पूरी मिलती, फिर दूसरों से चलती हैं। क्या कुछ हो रहा है आज, आप जरा जाके तो देखिए इन लीड्स में। अपने मर्द से तो कोई औरत खुश होगी, और अपनी बीवी तो किसी को अच्छी लगती होगी, वजह क्या है कि शैतान ने नफ्स को भरने वाली सारी चीजें कर दी। और अल्लाह ताला हम सबको ऐसी चीजों से बचा के रखे।